ओम शांति। मैं क्लास नहीं कराऊंगा, हम कुछ डिस्कशन करेंगे। एक प्रश्न है कि बाबा बार बार क्यों कहते हैं हमको कि विचार सागर मंथन करो, क्या आंसर है इसका? क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। और ज्ञान और स्पष्ट होता है इसके लिए, और सब बताएंगे। क्लास तो कराना नहीं है, हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा। और खुशी का पारा चढ़ता है। और बाबा ने कभी कहा है कि ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाएगा, ज्ञान का मनन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। और विचार सागर मंथन से क्या होता है? बाबा ने कभी अव्यक्त वाणी में कहा है कि शक्तिशाली हम जो बनते हैं वो भोजन खाने से नहीं, उसको हम कितना हजम कर रहे हैं उससे हम शक्तिशाली बनते हैं। और विचार सागर मंथन से क्या होता है? ज्ञान तो इतना बाबा ने सुना दिया, स्पष्ट है, फिर भी बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, क्यों? और व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। और जितना हम चर्न करेंगे उतना ज्ञान याद रहेगा। बाबा ने कहा है ज्ञान की कौन है, हम बुलबुल है तो टिकलू टिकलू चलती रहे। और गहराई में जाएंगे। और अभी हम जो कर रहे हैं यही विचार सागर मंथन है, एक ही टॉपिक लेकर उसके विस्तार में जाना। आज बाबा ने वाक्य कहा है मुरली में, बाप तुमको सब थोड़े में समझाते हैं और फिर डिटेल में समझाकर एक बात पर आते हैं। आज की मुरली में एक वाक्य है बीच में। और क्या होता है विचार सागर मंथन से? यहां वहां भटकना बंद हो जाता है। बाबा ने कहा है गाय जो होती है वो क्या करती है, खाकर उगाड़ती है। जो गाय उगाड़ती नहीं है उसको बीमार कहा जाता है। तो जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते वो गोया क्या है, बीमार है ना। बाबा ने साकार में कभी कहा है कि जिस तरह गाय उगाड़ती है उस तरह तुम बच्चों को भी ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन से ज्ञान स्पष्ट होता है, ज्ञान की गहराई में जाते हैं, वो ज्ञान व्यवहारिक होता है। बाबा की बहुत सारी बातें हमको पता है परंतु वो अभी तक व्यवहार में नहीं आई है, तो वो बातें व्यवहारिक व्यवहार में आती है। दूसरा, वो हम दूसरों को समझा सकते हैं, जो बात हमको स्पष्ट है वो हम दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये तो हुआ विचार सागर मंथन क्यों करना है। दूसरा प्रश्न है विचार सागर मंथन कब करना है, कब करना है? बाबा ने कहा सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करो, क्यों? बुद्धि फ्रेश होती है, बुद्धि में दूसरा विचार नहीं होता। और सब बोलेंगे, वातावरण शुद्ध होता है, वायुमंडल में पवित्रता होती है। और फ्री टाइम भी होता है। ब्राह्मणों के पास, अमृत वेले के पास जितना कम है उतना संसार में किसी के पास भी नहीं है। सही बात है, जितना समय ब्राह्मणों को अमृत वेले के बाद है उतना संसार में और किसी के पास भी उतना समय नहीं है। तो अमृत वेले के बाद का समय या अमृत वेले का समय विचार सागर मंथन करने के लिए है। अमृत वेले के बाद बाबा ने मुरलियों में भी कहा है कि चेक करो, दोहराओ अमृत वेले के बाद, क्या मैं वहां वहां हूं, अव्यक्त वाणी में आया हुआ है ना। अमृत वेले के बाद चेक करो अपने आप को, अपनी जांच करो, चेकिंग करो, चेंज करो। और क्यों करना है सुबह सुबह अमृत वेले, अमृत सुबह सुबह क्यों करना है विचार सागर मंथन? शांत वातावरण वो तो हो गया, और सुबह सुबह जो चीज की जाती है उसका प्रभाव सारे दिन भर पड़ता है। सुबह सुबह यदि व्यर्थ संकल्प है तो सारे दिन व्यर्थ संकल्प, सुबह सुबह अगर विकार के संकल्प है तो सारे दिन व्यर्थ संकल्प, सुबह अगर शक्तिशाली संकल्प है तो वो एक ही संकल्प सारा दिन अपने आप चलता है। आपने देखा होगा कभी कभी सुबह हम कोई गीत सुन लेते हैं, वो सारे दिन अपने आप गुनगुनाते रहते हैं। सुबह जो बात सुनी जाती है उसका प्रभाव मन में सीधा सबकॉन्शियस माइंड पर जाता है। और सुबह सुबह क्यों करना है, आपने देखा होगा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सारे दिन भर बहुत सारे लोग ऑनलाइन होते हैं तो स्पीड कैसे होती है, कम होती है ना उसकी। सुबह अगर यूज किया तो उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। संसार में सारे दिन भर जो वातावरण होता है वो बॉडी कॉन्शियसनेस का वातावरण है। संसार के जो भी मनुष्य हैं उनके कौन से संकल्प है, बॉडी कॉन्शियसनेस के संकल्प है। सुबह सुबह वो लोग सोए होते हैं तो सुबह का जो वातावरण है वो शांत होता है। वातावरण में वायुमंडल में जो वाइब्रेशंस है वो कम होते हैं। इसके लिए हम जो भी वाइब्रेशंस जो भी संकल्प करेंगे वो शक्तिशाली होगा और उसका प्रभाव चारों ओर फैलेगा। और ब्राह्मणों का आदि संगठन है तो एक का संकल्पों का प्रभाव दूसरे के संकल्प पर पड़ता है। बाबा ने किसी मुरली में कहा वृत्ति से वृत्तियों को परिवर्तन करने की सेवा करो। आपने देखा होगा अगर कहीं पर चोरी हो जाती है तो पुलिस क्या करती है, उनका एक कुत्ता होता है ना, पुलिस के पास एक डॉग होता है तो वो क्या करता है चोर को ढूंढ लेता है वाइब्रेशन से। एक साधारण सा चोर, एक साधारण सी आत्मा, एक विकारी आत्मा किसी स्थान पर अपने वाइब्रेशन छोड़कर सब जा सकती है तो संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं किस प्रकार के वाइब्रेशन फैलाएगी, सर्वश्रेष्ठ वाइब्रेशन। एक एक संकल्प जो मन में उत्पन्न हो रहा है वो जा रहा है प्रकृति में और प्रकृति के साथ उसकी रिएक्शन हो रही है और उसी तरह के रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। हम अगर ये सोच रहे मैं गरीब हूं मैं गरीब हूं मैं गरीब हूं तो आप पे ही वो संकल्प प्रकृति में जा रहा है, प्रकृति के साथ उसकी रिएक्शन हो रही है और उसी प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट हो रही है और वही हमारे सामने आ रही है। जो हम सोचते हैं बाबा कहते हैं वैसे ही हम बनते हैं। दूसरा प्रश्न है विचार सागर मंथन कहाँ पर करना है, एकांत में करना है। कहाँ पर एकांत, एक कमरा है उस पे हम विचार सागर मंथन कर रहे हैं, वो कमरे में हो सकता है, कहाँ करना है विचार सागर मंथन। सहज कहाँ हो सकता है विचार सागर मंथन, विचार सागर मंथन करने का स्थान है प्रकृति के समीप। अगर कोई कहे कि एक कमरे में बैठकर एक टॉपिक के ऊपर सोचो, ज्यादा नहीं सोच पाएंगे हम, पर यदि कोई कहे कि किसी नदी के पास बैठकर सोचो, किसी पहाड़ियों के ऊपर सोचो, किसी गार्डन में सोचो, ऐसे स्थान पर सोचो कि जहां संपूर्ण एकांत है, जहां आवाज नहीं है, वहां पर अपने आप बुद्धि खुलती है। एक कमरे में बैठकर हम जितना सोचते हैं उससे कई गुना हमारी बुद्धि अगर हम टेरेस पर चले जाएं तो वहां खुल जाती है। बाबा कहते हैं ना टेरेस पर बैठकर, अभी ये हफ्ते में ही आया था, कभी एकांत में विचार सागर मंथन करो। वैसे तो बाबा सुप्रीम अथॉरिटी है, वो जो कुछ कह रहा है वो संपूर्ण सत्य है। आज की मुरली में बाबा ने कहा तुमको कोई और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, संसार में बहुत सारी किताबें हैं वो सब है कलयुगी सामग्री, तुमको ना पढ़ना है ना किसी को सुनना है, यहां तक बाबा ने कहा हुआ है। बाबा जो ज्ञान सुना रहे वो संपूर्ण है, उस ज्ञान को पढ़ने के बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, परंतु उस ज्ञान को केवल किसी मुरली में बाबा ने कहा गए मुरली सुने और आ गए, ये क्या है पुरानी चाल। कोई 10 साल से भी मुरली सुन रहा है और सुना रहा है या पढ़ रहा है, केवल उतने से कुछ नहीं होगा। एक एक पॉइंट का विचार सागर मंथन करना पड़ेगा। बाबा ने कहा ना आज की मुरली में एक एक बात कितने की है, लाखों की है ना। बाबा जो भी सुना रहा है वो एक एक पॉइंट, एक एक वर्षन लाखों का है, एक एक रत्न है वो, एक ही पॉइंट लेकर उसका विस्तार करना। उसकी विधि ही क्या है, एक विधि है लिखना। जैसे बाबा ने कुछ कहा कि तुमको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्यों ऐसा कहा इसके ऊपर लिखना 10 पॉइंट्स, क्यों बाबा ने ऐसा कहा। जैसे बाबा ने आज ड्रामा की पॉइंट कही, ड्रामा की पॉइंट सारी लिखना एक ही जगह, ड्रामा के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, यह है विचार सागर मंथन। केवल मुरली पढ़ लिया ये तो सब कर रहे हैं, हमको उसके अंदर में जाना है, गहराई में जाना है, लिखना। जैसे हम ले लेंगे एक पॉइंट ड्रामा की, तो ड्रामा की क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास, सारी पॉइंट सुनाओ ड्रामा की 15-20। बोलो बहन जी, ड्रामा कैसा है? ड्रामा फिक्स है, बाबा ने कहा भगवान उवाच, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता। वो लोग कहते हैं कोई अनन्य बच्चे अगर शरीर छोड़ता है तो उसको मैं भी बचा नहीं सकता, भगवान भी इस ड्रामा में बंधायमान है, तो ड्रामा फिक्स है, ड्रामा को चेंज नहीं किया जा सकता। और सब सुना एक एक पॉइंट ड्रामा के बारे में, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, और ड्रामा बना बनाया हुआ है, और जो हो रहा है वही सत्य है, ड्रामा कल्याणकारी है, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है। और ड्रामा कैसा है इधर माता है, एक्यूरेट है, इस ड्रामा में कोई भी गलती नहीं है। निर्वीर भाई कहते हैं ना कि बहुत सारे ड्रामा थे 10-12 बाबा के पास, उसमें से ये चुना बाबा ने क्योंकि ये एक्यूरेट था, सबसे परफेक्ट ये था, इससे और एक्यूरेट और कोई ड्रामा नहीं है। और बस इतना ही, बहुत है ड्रामा के पॉइंट। हर एक का पार्ट फिक्स है, इसमें बदली सदली नहीं हो सकती, इसमें चेंज नहीं हो सकता है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है, ड्रामा परिवर्तनशील है। और ड्रामा बाप को पसंद है तो मुरली चली थी ना, बाप ड्रामा को, बाबा को पसंद है तो तुम बच्चों को भी पसंद आना चाहिए, वो जो वो दूसरा पॉइंट है जो बीत गया वो ड्रामा। और ड्रामा कैसा है, ड्रामा न्यायकारी है, क्या इस ड्रामा में किसी के साथ अन्याय हो रहा है, नॉट पॉसिबल, ड्रामा न्यायकारी है। ड्रामा कैसा है, इस ड्रामा में किसका दोष है, किसका दोष है, इस ड्रामा का हर एक्टर निर्दोष है, केवल निर्दोष नहीं संपूर्ण निर्दोष, इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं। जी ड्रामा को कोई भी बदली नहीं कर सकता, एक ही पॉइंट लेकर उसके ऊपर लिखना। हमने अभी बोला वो थोड़े पॉइंट्स निकले, पर अब जब लिखने जाएंगे तो हमको आश्चर्य होगा कि इतने पॉइंट्स कैसे निकल गए, आप ही बुद्धि चलना चालू हो जाती है। और जब विचार सागर मंथन होता है तो ही खुशी होती है ब्राह्मण जीवन में, अन्यथा केवल मुरली सुनने से हम शक्तिशाली नहीं बनते हैं। हमको अगर शक्तिशाली बनना है तो मुरली की गहराई में जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि गहराई में मोती है, ऊपर ऊपर नहीं अंदर है। तो विचार सागर मंथन कहाँ करना है, प्रकृति के समीप, एक बंद कमरे में विचार सागर मंथन मुश्किल से होता है, यहाँ पर बहुत स्थान है विचार सागर मंथन करने का, जितना विचार सागर मंथन यहाँ हो सकता है शायद और कहीं जगह नहीं हो सकेगा जितना यहाँ होता है। और बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा, आज की मुरली की पॉइंट्स जो भी याद है जिसको भी, और जो भी बाबा ने कहा, कुछ कुछ पॉइंट्स हमको याद रखनी है, मेमोराइज करनी है, क्योंकि अगर हमको याद है तो ही तो परिस्थिति के समय याद आएगी, अगर हमको वैसे ही याद नहीं तो परिस्थिति के समय याद नहीं आएगा। और क्या बोला बाबा ने, संघ से संभाल करनी है, ब्राह्मण जीवन में संघ किसका करना है, हम संसार की बात नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में नहीं वो तो है, बाबा का संग नहीं, ब्राह्मणों में किसका संग करना है? जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और जो धारणा मूर्त है, और किसका संग करना है? अभी यहां पर विचार सागर मंथन करने का प्रश्न है कि किसका संग नहीं करना है और किसका संग करना है, संसार में नहीं, अंदर, यहां पर ब्राह्मण संसार में, जो व्यर्थ बातों में होते हैं उनका संग नहीं करना है। दादी, जानकी दादी इनको क्या कहती है, गप्पे ग्रुप, एक ग्रुप होता है हर संगठन में, जो ये चिंतन करते रहता है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया। जो ज्ञानी तो आत्मा है वो इन व्यर्थ ग्रुप से दूर रहता है। और किसका संग नहीं करना है? किसका संग नहीं करना है या किसका संग करना है, दोनों पॉइंट बता सकते हैं। वो तो है नंबर वन पार्ट, नहीं ब्राह्मणों में यहां हमको किसका संग करना है, जिनको पुरुषार्थ में इंटरेस्ट है, जिनको मुरली के डिस्कशन में इंटरेस्ट है, जिनको ज्ञान की बातों में इंटरेस्ट है, जिनको योग में इंटरेस्ट है, जिनको विचार सागर मंथन करने में इंटरेस्ट है, जिनको बाप से प्यार और साथ साथ बाप के ज्ञान से प्यार है, उनका संग करना है। जो तीव्र पुरुषार्थी है उनका संग हमको करना है। जिनकी बुद्धि में निरंतर ज्ञान घूमते रहता है उनका संग करना है। जो परचिंतन परदर्शन से मुक्त है उनका संग करना है। और किनका संग नहीं करना है, इसके विरोध में बाबा ने एक मास के लिए क्या होमवर्क दिया है, निर्विघ्न और व्यर्थ से मुक्त। तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ जब हो है तो खुशी नहीं है, जहां जहां व्यर्थ है वहां वहां खुशी गायब। तो अपनी एक लिस्ट बनाओ कि मेरे जीवन में व्यर्थ कहाँ कहाँ है। वो टीवी है, वो इंटरनेट है, वो मोबाइल है, वो कहीं घूमने फिरने का रस है, खाने पीने का रस है, कौन से ऐसे रस है जो विघ्न रूप है? क्या क्या जीवन में है जो कि विघ्न है, उनको दूर करना है। ठीक है, तो बाबा ने आज संग की संभाल के बारे में कहा, ड्रामा के बारे में कहा, और क्या कहा आज की मुरली में, एक बात से ही सुनना है और किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट ऑथोरिटी एक बाप ही है, वो मनुष्य का ज्ञान है, ये परमात्मा ज्ञान है। और क्या कहा आज याद करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान उवाच, मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता। भगवान क्या क्या नहीं कर सकता, ये विचार सागर मंथन का पॉइंट है। बोलो क्या क्या नहीं करता है वो? देखो उसमें बाबा में मुरलियों में बहुत बार विरोधाभास आएगा। बाबा कभी कहते मैं जानी जानन हार नहीं हूं, कभी कहते मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं बाबा की मुरली की, एक पॉइंट को समझने के लिए चार बहुत सारी मुरलियों का आधार चाहिए। उसी सब्जेक्ट के बारे में बाबा ने अगली 10-15 मुरलियों में क्या कहा हुआ है, तब वो आज की मुरली की पॉइंट समझ में आएगी। केवल एक मुरली की एक पॉइंट लेकर उसको समझ नहीं सकते, उसी पॉइंट के बारे में, क्योंकि मुरलियां जो चल रही है साकार, वो देश काल परिस्थिति अनुसार चल रही है। किस तरह के बच्चे, कभी कभी बाबा कहते हैं कि तुम अगर ब्रह्मा को याद नहीं करोगे, तुम बिना ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा तक नहीं पहुंच सकते। कभी बाबा ने कहा है साकार में ही, अगर मम्मा बाबा को याद किया, अगर माँ की याद में शरीर छोड़ा तो सीधा दुर्गति को पाओगे। साकार महावाक्य है बाबा के, मम्मा बाबा के फोटो भी रखो तो दुर्गति को पाओगे। जैसे बच्चे सामने बैठे उस अनुसार साकार मुरली चल रही है। कभी बाबा कहते विदाउट ब्रह्मा तुम शिव बाबा तक आ ही नहीं सकते, दोनों पॉइंट से उसमें। तो बाबा ने आज का जो मुझे जो विचार सागर मंथन करने का पॉइंट लगा, वो लगा बाबा क्या क्या नहीं कर सकते। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि अनन्य बच्चा शरीर छोड़ता है तो मैं उसको बचा नहीं सकता, एक। दूसरा और क्या क्या नहीं कर सकता वो? बाबा कहते मैं, माताएं कहती है ना हमारे पति का बुद्धि का ताला खोलो, बाबा कहते मैं तुम्हारे पति की बुद्धि का ताला खोलने नहीं आया हूं। और ब्रह्मा कहते हैं मुझे खांसी आती है, तो बाबा क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी खांसी ठीक करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो ज्ञान सुनाने आया हूँ। और क्या, कोई बीमार पड़ता है तो बाबा क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करने नहीं आया हूँ, मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ। किसी के धंधे में नुकसान होता है तो बाबा कहते हैं ना, आपने मूल्यों में सुना है, मैं तुम्हारा धंधा ठीक करने नहीं आया हूँ, मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ। और ये है विचार सागर मंथन, मुरली का एक पॉइंट लेकर उसका विस्तार करना। बाबा ने एक वाक्य कहा, उसके ऊपर सोचना, उसकी गहराई में जाना। जितना हम गहराई में जाएंगे, जितना हमारा विचार सागर मंथन होगा, हमने कई क्लासेस सुन लिए, कई मुरलियां सुन ली, पर वो हमारा चिंतन नहीं था, दूसरों का चिंतन था। दूसरों के चिंतन का आधार लेना है और अपना चिंतन क्रिएट करना है। सारी ब्राह्मण जीवन सारा ही क्लास सुनने में नहीं लगा देना है, अभी हमको स्वयं विचार सागर मंथन करके स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। और बाबा क्या नहीं कर सकता है, और भी कोई पॉइंट है जो साकार में बोलिए? मरे हुए को जीवन दान नहीं दे सकता, आज बोला। और बाबा किसी का भी पार्ट चेंज नहीं कर सकता, चाहे कैसा भी हो, कोई कितना भी खराब पार्ट है। बाबा गॉड डजंट इंटरफियर इन कर्म फिलॉसफी। जिसका जो कर्म किया है वो ऑटोमेटिक मशीनरी बनी है यज्ञ में, जिसने जो कर्म किया उसका फल उसको ऑटोमेटिक मिलता है। किसी ने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो, ये बाबा नहीं करते। भक्ति में कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। ऑटोमेटिक मशीनरी बनी हुई है। वरदान में क्या बोला बाबा ने आज, संगठन के बारे में कहा ना, कल का वरदान भी संगठन के बारे में था। स्नेही बनकर रहना है, इतना न्यारन मत बन जाना, ये मत सोचना कि हमारा हिसाब किताब बन जाएगा, हम फंस जाएंगे, रहना इसी संगठन में है। सबसे बेस्ट स्थान कौन सा है हमारे लिए रहने का, जहां हम है, सबसे बेस्ट टाइम यही है। बाबा ने एक मुरली में कहा है, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, जहां तुम हो, जिस स्थान पे हो, उसी स्थान पे रहकर, उन्हीं व्यक्तियों के बीच रहकर और उसी परिस्थिति में संपूर्ण बनना है। अगर तुमको सब अनुकूल मिल गया जैसा चाहिए, शायद तुम संपूर्ण नहीं बन पाओगे, संपूर्ण प्रतिकूल परिस्थितियों में बना जाता है, जहां विरोध हो वहां संपूर्ण बना जाता है, जहां सब कुछ अच्छा है वहां संपूर्ण बनने का कोई ये नहीं है। और हमारे जो संगठन में वो सब कौन आए हैं, आसपास की आत्माएं, जो हमारे जन्म जन्म के दिन से हमारा हिसाब किताब है वही आए ना। हमारे फ्रेंड सर्कल में कौन है, जन्म जन्म की जिसके दिन से दुश्मनी है वही आ गए है सारे, बराबर है कि नहीं? बाबा ने कहा है, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतु होंगे। संसार वालों के साथ हिसाब किताब नहीं है ब्राह्मणों के, ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतु होंगे। इसके लिए अमृत वेला एक प्रयोग करना है। जैसे अमृत वेला खत्म होता है, उस समय या फरिश्ता रूप में अपने सामने दो दृश्य बनाने हैं, बहुत सारी आत्माओं को इमर्ज करना है कि जिन आत्माओं को हमने जन्म जन्म दुख दिया है, सताया है, कहीं जन्म में हम कहीं राजा होंगे, वो किसी दूसरे, क्योंकि देवी देवता धर्म की आत्माओं एक साथ चलती आ रही है। बाबा ने कहा ना, 21 जन्म ये परिवार चलने वाला है, इसी परिवार में तुमको रहना है, इससे तुम न्यारे हो कि कर्म सन्यासी के संस्कार अपने अंदर नहीं डालो। तो उन आत्माओं को इमर्ज करना है जिनको हमने बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है, और उनसे क्या करना है, क्षमा याचना करना है, माफी मांगनी है। वो सारी ब्राह्मण आत्माएं ही होंगी, संसार की आत्माएं कम होगी, क्योंकि हमारे सारे हिसाब किताब ब्राह्मण आत्माओं के साथ है। तो उन आत्माओं को इमर्ज करना जिनको हमने सताया और उनसे माफी मांगना, और दूसरी तरफ उन आत्माओं को इमर्ज करना जिनको, जिन्हें जिन्होंने हमको सताया, दुख दिया, शायद हमारी मृत्यु के कारण बने वो किसी जन्म में, तो उनको बिना किसी शर्त के क्या करना, क्षमादान। ये दो काम अमृत वेले करना है। उन सब आत्माओं को इमर्ज करो जिन्होंने हमको दुख दिया है, उनको क्षमा। उन सब आत्माओं को इमर्ज करो जिनको हमने दुख दिया है, उनसे माफी मांगना। कि हे आत्मा, उनसे बात बाबा ने कहा है अव्यक्तवाणी में, आत्माओं को इमर्ज करो, आत्माओं से रूरियान करो, आत्माओं से वार्तालाप करो, आत्माओं को आह्वान करो। एक दूसरा ये भी प्रयोग है, यहां पर जितने भी लोग आते हैं, हर सुबह एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करो कि आज सुबह से लेकर शाम तक जो भी आत्माएं यहां आने वाली है, उन सब को इमर्ज करो और उन सब से बातें करो कि ये वही स्थान है। कौन सा? ये वही परमात्मा का स्थान है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, इसके लिए यहां पर आ जाओ। ये हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो कर ही रहे, पर सबसे ज्यादा हम अपने लिए कर रहे हैं। ये सकाश देना जो है, जिनको सकाश दे रहे उनका तो फायदा है, पर उनसे ज्यादा हमारा फायदा है। हाँ, हम कि वो तो देखो, ड्रामा शब्द जो है ना, दिस इज द मोस्ट मिसयूज वर्ड इन यज्ञ। ब्राह्मण सबसे ज्यादा मिसयूज कौन सा शब्द करते हैं? ड्रामा। ड्रामा कहने का अधिकारी कौन है, ये प्रश्न है मेरा। ड्रामा शब्द कौन यूज कर सकता है और कौन नहीं यूज कर सकता? ड्रामा शब्द वही आत्मा यूज करती है जो संपूर्ण देही अभिमानी है, जो एक्यूरेट श्रीमत पर है। इसको, इन आत्माओं को जो तीव्र पुरुषार्थी है, उन वही शब्द यूज कर सकती है, और वो भी केवल पास्ट के लिए, बस जो हो गया। आगे जो हो रहा है और जो होने वाला है उसके लिए ड्रामा शब्द यूज नहीं करना है, जो हो चुका है उसी के लिए, और यूज कर सकती है केवल तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं। सब आत्माएं यूज नहीं कर सकती। हमने गलती कर रहे हैं और हम कह रहे हैं ड्रामा। बाबा कहते हैं ना, भूल होती तो बाप को सुना दो, आधा माफ हो जाएगा। पर बाबा ने यह भी कहा है, इस ड्रामा में माफी नहीं हो सकती। क्षमा शब्द इस ड्रामा में है ही नहीं। जो जिसने किया उसको उसको भोगना ही है। ये तो आप बाबा को सुना रहे हो तो हल्का हो जाओगे, ये दूसरी बात है। जैसे मैंने कहा, देश काल परिस्थिति अनुसार मुरली चल रही है। किसी ने बहुत बड़ी गलती कर ली और उसको रियलाइज हो गया तो सुना दिया तो उसका माफ हो जाएगा। पर कोई गलती कर रहा है, बाबा को सुनाता है, वापस गलती करता है, वापस सुनाता है, वापस गलती करता है, वापस सुनाता है, माफी तो इस ड्रामा में नहीं हो सकती। जो कुछ किया है वो भोगना पड़ेगा। चाहे एक मुरली में बाबा ने कहा है, तुम्हारी स्थिति डाउन हो जाएगी। स्थिति का गिरना ही भोगना है। कोई अलग रीति से सजा नहीं मिलेगी। स्थिति का गिर जाना ही भोगना है। अगर किसी से गलती हो जाती है और उसको रियलाइज हो गया, जैसे आपको पता होगा, मैं 5 मिनट और बोलूंगा बस। एक बार शांतिवन में एक सेवाधारी था, नया नया आया था, तो वहां पे किचन में उसकी सेवा थी। एक बहुत बड़ा ये बनाया था, छाछ, चाशनी जिसको बोलते हैं ना, शक्कर का, शक्कर और पानी से जो क्या कहते हैं, चाशनी। अच्छा, तो वो रात में बना के रखी थी पूरी कढ़ाई भरकर। वो सेवाधारी सुबह सुबह आया, उसको लगा पानी है, उसने सब नीचे डाल दिया। और डालने के बाद में उसको पता चला दूसरों से, उसके जो इंचार्ज सीनियर, कि ये तो ये था। तो इतना डर गया, बहुत ज्यादा डर गया, और ये खबर सब तक पहुंच गई, और लास्ट में दादी तक पहुंच गई, मतलब बड़ी दादी थी, प्रकाशमणि दादी। और फिर उसको दोपहर में मैसेज आया कि दादी ने तुमको बुलाया है। वो इतना डरा हुआ था, अंदर से इतना डरा हुआ था कि कितना सारा नुकसान हो गया उसके वजह से। पर उसको इतनी अपनी मिस्टेक बहुत डीपली रियलाइज हो गई थी। दादी ने उसको बुलाया कॉटेज में। दादी ने कहा, आओ बच्चे बैठो। उससे पूछा, तुमने नाश्ता किया? और उसको दादी ने टोली दी बस, और भेज दिया। जिसको पहले ही रियलाइज हो गया, उसको और कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो ये तो एक ड्रामा की पॉइंट थी यज्ञ की, और ये महान आत्माओं की निशानियां भी ऐसी है। समझ लेती है आत्माओं को, सामने कौन सी आत्मा है। तो ड्रामा शब्द हम केवल पास्ट के लिए यूज करेंगे और ड्रामा शब्द का मिसयूज नहीं करना है। जो भी हमने कुछ पाप किए हैं ब्राह्मण जीवन में, अज्ञान का छोड़ दो, बाबा ने कहा है ब्राह्मणों को 63 जन्म के पाप को चुक्त करने में उतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पापों को भस्म करने में लगता है, क्योंकि अज्ञान में एक का एक गुना दंड है और ज्ञान में आने के बाद एक का 100 गुना दंड है, और दंड क्या है, स्थिति का गिर जाना ही दंड है, उमंग उत्साह खत्म हो जाना ही दंड है, खुशी गायब हो जाना ही दंड है, और वो कोई भगवान नहीं देता, ड्रामा अपने आप देता है। तो बाबा का राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं, ये आज का स्लोगन है। तो कल की जो मुरली चलेगी उस पर सारे दिन भर बीच बीच में विचार सागर मंथन करना, बीच बीच में उसको पढ़ते रहना और उसके ऊपर लिखना, उसको रिवाइज करना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। एक मुरली में बाबा ने कहा ज्ञान की चर्चा करना ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, कर्तव्य है ये, जैसे संडे की मुरली में भी था ना, विश्व कल्याण हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है और कर्म भी है, धर्म भी है। तो ज्ञान की चर्चा करना, वारे में ब्राह्मण आत्मा किताब है, उसमें ब्राह्मणों के कर्तव्य लिखे है 14, उसमें से 14वां जो कर्तव्य है बाबा ने लिखा है उस किताब में, बाबा के ही महावाक्य है कि ज्ञान की चर्चा करना ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो ज्ञान की एक दूसरों के साथ चर्चा करते रहना है तो ज्ञान बुद्धि में फ्रेश रहेगा, नहीं तो ज्ञान उड़ जाता है। अच्छा, ओम शांति। शरीर का नाम डॉक्टर सचिन भाई है, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा देता हूँ एज अ फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट लगभग पिछले 4 साल से, और ज्ञान में मुझे लगभग 12 साल हो रहे हैं। अभी यहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल, यहाँ पर हैदराबाद में अपोलो हॉस्पिटल में कुछ ट्रेनिंग था मेरा डायलिसिस का, उसके लिए मैं आया था, तो मैं कुछ दिन बंजारा हिल्स अपना जो सेंटर है वहाँ रुका और आज सुबह ही यहाँ आया हूँ। यहाँ मैं 2 दिन हूँ, फिर 14 तारीख को यहाँ से जाना है। अच्छा, ओम शांति।